ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अगर आपको याद हो, हमने बात की थी थॉट पावर की, और इन दिनों सचमुच चर्चा में है कि आपके विचार जो हैं वो एक शक्ति है, और इनफैक्ट वो आपके पूरे जीवन को डिसाइड कर सकते हैं अगर अपने विचारों को आप एक दिशा दे पाए। लेकिन पिछली कड़ी में हमारे सामने जो बात आई कि एक तरफ तो जो विचार आते हैं मन में, और दूसरी तरफ जो मैं निर्णय लेता हूं, जो बुद्धि मेरी काम करती है। अब बुद्धि की शक्ति क्या शक्ति है, और बुद्धि की शक्ति को हम कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं और एक सही रास्ता दे सकते हैं और फियरलेस बना सकते हैं, इसी पर आज फिर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी दीदी मोहिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी। ओम शांति।
धन्यवाद।
एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अभी तक हम ये कोशिश करते थे कि विचार जो आ रहे हैं उस पर हम देखें कि हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं और हमें जो चाहिए उसे लेने की कोशिश करें। लेकिन अब जो एक शिफ्ट थोड़ा सा हम करें कि बुद्धि पर भी ध्यान दें, कि आपने कहा कि बुद्धि निर्णय करने की जो शक्ति है या इंटेलेक्ट जो है, दैट प्लेज अ मेजर रोल। लेट्स हैव अ रीकैप। How does it play a major role? कैसे है कि बुद्धि का मेरे जो पूरे जीवन पर गहरा असर है?
पहले तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों शक्ति हैं, दोनों सोची शक्ति है, मन का सोच, बुद्धि का सोच, तो उसमें एक अंदर डायलॉग चलता है, वार्तालाप चलता है। जैसे कि कहते हैं पता कैसे चले, तो आत्मा जो चैतन्य शक्ति है उसमें ये दो एबिलिटीज है। जैसे ऐसे ले लीजिए कि दो हाथ दो पैर, राइट, तो दोनों का अपना फंक्शन है। तो मन भी एक योग्यता है, उसको सोचना है, बुद्धि भी एक योग्यता है, उसको भी सोचना है, परंतु निर्णय करना है। तो अभी दोनों जो हैं उनका वार्तालाप अंदर चलता है। अच्छा वार्तालाप है, जैसे समाधान मिल गया तो खुश है। वार्तालाप में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। अभी कहते हैं लोग की महाभारत, महाभारी लड़ाई पहले तो अंदर चलती है, रामायण पहले तो अंदर चलती है फिर बाहर होती है। तो ये मन और बुद्धि के बीच में संघर्ष है। अशांति का कारण भी मन बुद्धि का संघर्ष है। अगर दोनों में शांति हो, दोनों में समानता हो जाए, तो अंदर में अशांति हो ही नहीं सकती है। तो अशांति सिर्फ संकल्पों से नहीं है, लेकिन क्योंकि बुद्धि कह रही है नहीं शांत होना चाहिए, मन अशांत हो जाता है। बुद्धि शांत कराने की कोशिश करती है पर मन कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि में शक्ति नहीं है। तो अगर हम बुद्धि को शक्तिशाली बना के मन को डायरेक्शन दे सकें कि नहीं तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं है, और दोनों का आपस में एक मित्रता का संबंध हो जाए कि ना कि आर्ग्यूमेंट का। अभी आर्ग्यूमेंट का संबंध है, ना उस पर विश्वास रहा, ना मन का बुद्धि पर विश्वास है, क्योंकि दोनों से गलती होती है। कुछ मन से गलती हो रही है उल्टा सोच के, कुछ बुद्धि उल्टे निर्णय ले लेती है। अगर बुद्धि के अंदर सच्चाई, प्रेम, परमात्मा पर विश्वास, ये सब गुण आने लगे, तो जैसे कि एक थोड़ी पावर बढ़ रही है बुद्धि की, तो पावर बढ़ रही है तो मन उसकी बात सुनेगा। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो हमने सोचा आज मन कर रहा है कि ये खा ले, मन कर रहा है ये कर ले, हमने किया, पर हमने देखा कि बाद में इतना अच्छा नहीं लगा,
नहीं आया। हाँ,
फिर बुद्धि, फिर एक बार ऐसा होता है बुद्धि कहती है कि नहीं हमें ये नहीं करना है, तो मन वॉच करता है कि देखता है कि आज बुद्धि नहीं कही, चलो बुद्धि की बात मान लो, तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे मन ने शंका लाई, डाउट लाया कि ये होगा नहीं, कभी नहीं होगा, ऐसा होगा होगा, बुद्धि कह रही क्यों नहीं होगा, मैंने तो राइट पाथ लिया, मैंने तो राइट डिसाइड किया, तो मन उस समय विश्वास किया बुद्धि पर और बुद्धि ने काम किया, तो देखा रिजल्ट बहुत अच्छी निकली। तो एक जैसे गैप कम होता जाएगा, अभी बहुत गैप है तो अभी झगड़ा चलता है, जैसे वो धीरे धीरे गैप विश्वास बढ़ता जाता है। इसी को आत्मिक विश्वास कहते हैं। लोग अपने ऊपर विश्वास रखो। अब अपना ऊपर मतलब क्या है कि अपनी जो सोच है और अपनी जो बुद्धि है, तो बुद्धि में विश्वास बढ़ाते जाने से मन को सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि जो थक जाती है ना, जैसे देखिए बच्चे भी होते हैं, कई बार हर बार कहना पड़ता है, कहते रहना पड़ता है, तो माँ बाप भी कभी कभी सोचते हैं कि हमें ये करते रहना पड़ेगा। तो जो समझदार माँ बाप है वो ही सोचते हैं कि मैं कहूं इस तरीके से कि फिर नहीं कहना पड़े। डांटते रहने से तो बच्चा नहीं सीख जाएगा, परंतु मैं बात इस ढंग से कहूं बच्चे को समझ के कि इसको इसी तरह से बात समझ आती है, फिर आपको दूसरी बार नहीं कहना पड़ता है। तो बुद्धि भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देती है कि मुझे मन को ऐसे ढंग से बात कहनी है कि मन मान जाए, क्योंकि पहला व्यवहार और संबंध मन बुद्धि का है। आपका हमारा सबका व्यवहार औरों से बाद में है, पर अंदर जो ये व्यवहार चल रहा है ना रात दिन, अगर दोनों में सुलझ जाए, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए, विश्वास बढ़ जाए, तो उसकी बहुत पावर हो जाती है।
इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि पेरेंट बच्चे का, पेरेंट जो है कई बार आजकल जो बात कही जाती है कि बच्चा पेरेंट से उसको देखकर सीखता है। आप कितना भी बच्चे को समझाते रहो कि ये सही है ये गलत है, लेकिन अगर पेरेंट ऐसा नहीं कर रहा है तो बच्चा वो नहीं सीखता है। तो क्या बुद्धि के साथ भी ऐसा हो जाएगा कि बुद्धि अपने ऊपर फोकस करे और हम अपनी बुद्धि जो है वो ऐसे स्ट्रांग होकर सही रास्ते पर चले तो मन जो है वो सीख सकता है?
यही बुद्धि को इम्प्रूव करते जाना है कि जैसे कोई बात होता है, एक होता है सोच चला, दूसरा होता है कि बुद्धि सोचती है, बुद्धि का सोचना ही होता है कि बेटर कैसे करूं। बुद्धि हमेशा सोचती रहती है कि कैसे करूं कैसे करूं, मन को ही सोचना होता है कैसे करूं। मन तो जैसा होता है वो चलता रहता है, पर बुद्धि को सोचना होता है। तो जैसे मैंने एक बात कही और वो बात इफेक्टिव नहीं है, मतलब प्रभाव नहीं हुआ, तो जो समझदार व्यक्ति होगा ना वो न तो अपने में उम्मीद छोड़ेगा न दूसरे को डांटेगा, पर ही सोचेगा कि मैं बात को थोड़ा समझूं, इस बात को समझ करके मैं जो शब्द चूज करूं या शब्द डिसाइड करूं वो जरा डिफरेंट करूं। तो वो जब क्वालिटी बढ़ जाएगी ना, जैसे मैं एक मिसाल देती हूं कि जैसे हम लोगों क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, तो हम गए हमने एक डिपार्टमेंट में देखा कि वो व्यक्ति हमेशा ऐसे करता है। जब हम गए हमने कुछ कहना ही है, क्योंकि अगर मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो जरूर है जो कम एक्सपीरियंस वाला है उस कुछ कमी दिखाई देगी, परंतु हम ये सोचे कि उसको ठीक तो कर रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो मैं वहां गई, मैंने बोला कि आप लोग हर बार ही ऐसे करते, मैं कितनी बार तुमको कहती हूँ। तो दूसरा व्यक्ति मन में सोचते हैं कि आप भी तो हर बार ऐसे ही कहती है ना, तो वो लोग हमारे पहुंचने से पहले ही मन को ऐसा बना लेते हैं कि ये सुनना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जाओ इस तरीके से जाओ कि एक तो वो वेलकम करें, दूसरा वो अप्रिशिएट करें कि आज मोहिनी बहन आई, तूने ये बात बहुत अच्छी कही हमको, हमको बहुत अच्छी लगी, हमने कुछ सीखा। तो जैसे क्या होगा कि जीवन में जो प्रयास है वो बुद्धि को इम्प्रूव करने का होगा। अब आप देखेंगे सारे वर्ल्ड में दो बातें, एक एफिशिएंसी कल्चर बहुत हो गया है, स्कूल में आप टॉप क्लास, बिजनेस में एफिशिएंसी कल्चर हो गया, दूसरा प्रेशर बहुत हो गया है लोगों को, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन, टीचर की एक्सपेक्टेशन, फिर बिजनेस में,
फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने आप से भी तो इतनी सारी उम्मीदें हमने लगाई हैं,
तो ये सारी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जो होता है ना, तो फिर लोग जिसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्ट अप, आजकल इतनी बुक्स इसी पर चल रही है कि आप कैपेसिटी आपकी बढ़े, अब कैपेसिटी वो ब्रेन की बढ़ा रहे हैं, है ना, कि क्रिएटिविटी हो, जैसे टॉप मैनेजमेंट में जाना है हमेशा इसी पर ही लोगों का बहुत रहता है, तो कैपेसिटी बिल्ट अप। लेकिन उनको ये पता नहीं कि कैपेसिटी बिल्ट अप जैसे दो चीजें होती हैं, एक बुद्धि होती है, दूसरा विवेक होता है। विवेक जो है इससे कॉन्शियस पावर ने कि निर्णय शक्ति, एक बुद्धि ने तो इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर आपका विवेक काम करता है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहते हैं विवेक जगा हुआ नहीं है। देखो विवेकानंद जी की कहानी सुनाते हैं कि उनको एनलाइटनमेंट हुई, तो जिसको हम लोग कहते हैं ये बुद्धिमान तो बहुत है पर विजडम नहीं है। किसी किसी को देखते हैं तो उसको बहुत पढ़ा लिखा नहीं, बहुत नहीं, कहते हैं बहुत सेंसिबल, बहुत समझदार आदमी है। अब समझदार कहना और बुद्धिमान कहने में भी फर्क होगा, क्योंकि बुद्धि ने तो इन्फॉर्मेशन ले ली, सीख लिया, पर उसके बाद समझ बनती है, यू अंडरस्टैंड समथिंग। अब वो समझ बड़ी शक्ति है। अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी राइट टाइम पर अगर वो समझ नहीं लेते, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो निर्णय में फर्क होगा। प्रॉब्लम तो कई है, जैसे सबसे बड़ी लिसनिंग प्रॉब्लम है, तो लिसनिंग प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई, फिर समझने में फर्क हो गया, फिर समझ को जो यूज करता है ना इंसान उस समय पर राइट तरीके से, तो विवेक कहते हैं हम उसको। कई कई कहते हैं भाई इज ए वाइज पर्सन, क्योंकि वो जब बात कहता है, निर्णय देता है, इट वर्क्स। तो उसने सिर्फ बुद्धि की इंफॉर्मेशन से नहीं लिया, समझ, तो समझ भी एक बुद्धि की विशेषता है।
बुद्धि की चर्निंग के बाद समझ क्रिएट होती है, या बुद्धि के एक्सपीरियंस के बाद, यू नो चार बार बुद्धि ने एक अच्छा एक सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना था, ये जो डर है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं या नहीं जाऊं, बुद्धि का जो डर है वो मन क्रिएट करता है या बुद्धि अपने आप ही क्रिएट करती है, या मन क्रिएट करके बुद्धि के ऊपर ओवरपावर कर लेता है?
नहीं, किस जो घटना पहले हो चुकी है उसमें किस पर अफेक्ट आया है? आपने रॉन्ग निर्णय किया है इस पर अफेक्ट आया है तो बुद्धि में डर बैठ गया, और अगर कोई बात हुई है घटना उसकी जो दुख सुख हुआ है उसका मन पर अफेक्ट आया, तो इसलिए दोनों पर अफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए हमको देखना यह है कि डर मन में भी आ सकता है, डर बुद्धि में भी, लेकिन अगर हम बुद्धि में विश्वास बढ़ाएं, करेज बढ़ाएं, जैसे एक राजयोग की सबसे बड़ी शक्ति है पावर टू फेस, कि हो गया मैंने कर लिया, अब हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, तो मेरे को जो भी बात आएगी मुझे फेस कर लेनी चाहिए, परंतु फेस करते समय मेरी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जो ज्यादा फील ना हो, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं जो कॉन्सिक्वेंसेज है रिजल्ट है वो नहीं बदल सकती, पर जब वो रिजल्ट आएगी मैं कैसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसको कैसे डील करती हूँ, मैं उसको लाइटली लेती हूँ या आई टेक इट एज पनिशमेंट, ये सब मेरे ऊपर है। तो मैं प्रिपेयर ये नहीं कर रही हूँ कि ऐसा ना हो, मैं प्रिपेयर ये कर रही हूँ कि अगर हो ही गया, जैसे कहते हैं ना भाई बाण छोड़ ही गया तो जहां लगेगा मुझे चोट न लगे, किसी और को चोट न लगे, इतना हम लक्ष्य रख सकते हैं। तो ये भी एक अपनी ट्रेनिंग हो जाती है, समझ की बात हो जाती है,
फिर वो समझ आ जाती है, फिर कई बार करने के बाद वो समझ बन जाती है।
फिर जो आपने कहा ना डर किसको है, तो मैं वही बता रही थी कि डर दोनों को आ सकता है। अगर बुद्धि का निर्णय रॉन्ग हो गया तो अब बुद्धि को विश्वास कम होने लग गया, कभी मन के सोच पर चल पड़े तो वो डर आता है, तो मन को भी डर होता है बुद्धि को भी। लेकिन अगर आप बुद्धि को अपने निश्चय के आधार से चलाएंगे ना कि फेथ रखो फेथ रखो फेथ रखो, तो उसका डर जो है कम हो जाता है। फिर वो जब मन डर पैदा करता है ना, क्योंकि मनुष्य ने अपना स्वभाव बना लिया है कि अनसर्टेनिटी में जाता रहता है, फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा ऐसा तो नहीं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो सोच रहे हैं इस समय अगर वही हो, सोचो नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका सोच भी वो वेव्स बना रहा है।
अगर ऐसा हो गया तो यू नो वी
कीप ऑन थिंकिंग, वेव्स बना रहे हैं ना, और वो जो वेव्स आप बना रहे हैं उसका अफेक्ट तो हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, एक कहावत है, वो कहते हैं कि थिंक ऑफ डेविल डेविल बी हियर, थिंक ऑफ गॉड गॉड विल बी। मैं कहती हूँ ऐसा मैं सोचू ही क्यों अपने मन को, कहते फिर कहते मन होगा तो अच्छा फिर फेस कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि एक विश्वास है, फेथ है, दूसरा पेशेंस है, क्योंकि मनुष्य धैर्यता बहुत जल्दी लूज कर देता है, जब धैर्यता लूज करता है तो बात ठीक होने वाली होती है वो भी बिगाड़ देता है, खुद ही बिगाड़ देता है बहुत जल्दी क्विक। तो इसलिए ये कहते हैं ना बुद्धि में भी एक पेशेंस की बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत जल्दी क्विक डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी ने कहा कुछ देखा बोला ये ठीक नहीं, आई एम नेवर गोइंग टू डू इट नेवर। मैं स्माइल करती हूँ, कहते हैं आपने क्यों कहा, मैंने कहा कभी नहीं बोलो ऐसे, यू डोंट नो कल हो सकता है आपको करना पड़े, पर आपको उस समय फिर जिद आ जाएगी कि कल मैंने नेवर बोला है, तो आप उसको बोलो कि आई विल थिंक अबाउट इट इंस्टेड ऑफ आई नेवर गोइंग टू। कई बार लोग जो हैं तो वो आवेश में आकर के हम वचन दे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बात बार बार कहते हैं कि तुम लोग कसम क्यों ले लेते हो चलते फिरते कि मैं जिंदगी भर ये नहीं करूंगा जिंदगी भर ये नहीं करूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते। तो कहने का मतलब कि ये भी जब अंदर में धैर्यता जब नहीं है, या जिसको हम एक शब्द कहते हैं फार साइटेडनेस, हमारे यहाँ ये शब्द कहते हैं, पता नहीं कहां तक समझ पाएंगे, कोई मनुष्य दूर तक सोच पाते हैं, कोई आजकल की सोच पाते हैं,
दूरदर्शिता जैसे कहते हैं।
एक तरफ तो हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत दूर की सोचे, बहुत भविष्य की सोचे, परंतु जिसको समझ होगी ना वो कम से कम थोड़ा जो है ना हर एक चीज को, चलो कोई कहेगा कि अच्छा मुझे एक महीने के लिए वो है, तो धैर्यता जो है ना उससे भी निर्णय शक्ति बढ़ती है, तो फिर आप एकदम से क्विक नहीं करते कोई भी चीज, लेकिन धैर्यता से करते। तो विश्वास के साथ दो गुण चाहिए, एक करेज और धैर्यता।
और जैसे आपने कहा कि पावर टू फेस, आप फेस बाहर का भी हो सकता है और मन का भी बार बार आता हुआ ये उलाहना कि देखा मैंने कहा था मुझे डर था, ये जो मन दोनों के उलाहने भी चलते हैं, वो उसको उलाहना देता है, बुद्धि भी कई बार उसको उलाहना देती है कि मन के करते मैंने कर लिया ये, तो अब देखो हमें ये करना पड़ा। सो ये उलाहनों को भी कैसे अपने आप,
ये कंप्लेनिंग नेचर जो आजकल हो गई है ना, बहुत अच्छा हो रहा है तो भी कंप्लेन है, नहीं हो रहा है तो भी कंप्लेन, ये नेचर यहीं से डेवलप हो रही है ना। इसलिए जो भी हैबिट देखो, बाहर इंसान देखे ना, वो अंदर देखने लगे कि फ्रॉम वेयर इज कमिंग, क्यों मेरे में आर्ग्यूमेंट की नेचर है। अंदर जो आर्ग्यू करता है वो बाहर भी करता है। अंदर जैसे आप फेस करना पड़ रहा है तो अंदर नहीं फेस करना चाहता, वो दूसरों को फेस, पावर टू फेस के दो मतलब होते हैं, एक होता है कि स्थिति अच्छी हो सामना करो, दूसरा सामना कुड बी कंफ्रंटेशन। तो लोगों ने कंफ्रंटेशन की नेचर बना ली, और हम कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनाओ कि जो भी बात आए बड़ी नहीं लगे, और आपकी शक्ति इतनी हो कि आप उस यू कैन टेक केयर, उसको सामना करने की शक्ति कहते हैं। कई फिर सामना की शक्ति, जैसे मैंने कहा ना कि वी विल फेस इट, तो वो ब्रेवरी की जगह वो लोगों के अंदर दूसरा रूप ले लेता है, कि बहादुरी का मतलब नहीं है कि आप इस तरह से फेस करो, पर सच्ची वीरता अंदर में यही है कि जो भी बात आती है तो उसमें धैर्यता से, और उसमें कुछ भला देखो, उसमें कुछ कल्याण देखो, कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि लर्निंग होती है ना। ये भी एक अंदर में बुद्धि को अगर हम सिखा दें कि कोई बात नहीं है, आज आपका निर्णय ऐसा हुआ, आई हैव लर्नड समथिंग, आई एम गोइंग टू ग्रो, मैं आगे उन्नति करूंगी, तो हमेशा लाइफ में ये प्रिंसिपल तो रखना ही पड़ेगा कि आप परफेक्ट नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं, और आपके दिल है, सबका भावना होती है कि मेरी परफेक्ट हो, सब बात बस ठीक ही हो, परंतु वो भी तो एक जर्नी है ना।
तो इंटेलेक्ट की स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या फोकस करना चाहिए, कैसे बाहर से क्या लेना चाहिए और अपने ऊपर किस तरह काम?
सबसे तो ये है कि जितनी भी जो भी बात हम सुने देखे पढ़े वो राइट बात होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जहां तक जरूरी रखे उसके डिटेल्स में नहीं जाएं। जैसे देखिए मैं हूं, मेरा क्योंकि जर्नलिज्म की हुई है मैंने, तो पहले मैं न्यूज़पेपर क्या हर न्यूज को इतना डिटेल में पढ़ती थी, फिर मैंने ये देखा कि जरूरत नहीं मुझे जानने की कि 110 लोग मरे कि 20 मरे, मैंने अब मैं हेडलाइंस देख लेती हूँ सारे वर्ल्ड का मालूम, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं जो इतनी बुद्धि को एनर्जी को कंज्यूम कर रही हूँ, न केवल कंज्यूम लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसका जो फिर सोचना है, देखो पहले बुद्धि ने किया, तो इसलिए डिसाइड करना चाहिए जीवन में कहाँ तक मुझे किन किन बातों में कितने तक इंटरेस्ट लेनी है। जैसे दूसरे व्यक्ति की चर्चा चल रही है, कोई इवेंट की बात कर रहे हैं, तो आप कन्वर्सेशन रखिए पर कितना डिटेल जरूरी है। तो जिस पर एक बहुत बड़ी शक्ति बोलते हैं कि मनुष्य को विस्तार का सार करना आना चाहिए, और जहां पर सार मिल गया उसकी डिटेल निकालना भी एक कैपेसिटी है बुद्धि के लिए, क्योंकि ये पावर सारी मन की नहीं है बुद्धि की है, हाउ मच यू एक्सपैंड एंड हाउ मच यू वॉन्ट टू ब्रिंग टू कंक्लूजन। जैसे कई लोग बात कर रहे होते हैं तो दूसरे कहते हैं बट कम टू द पॉइंट, कंक्लूजन क्या है, आखिर कहां तक हम पहुंचे, तो कई करते रहेंगे पर कंक्लूड नहीं कर पाते। ये भी कैपेसिटी है ना, जब हम शक्तियों की बात करते हैं ये कोई मन की शक्ति नहीं है, सार को विस्तार, विस्तार को ये बुद्धि की है। तो हर बात में इस बुद्धि को ये निर्णय करना चाहिए किन बातों पर मुझे क्या अफेक्ट आता है। जैसे कोई लोग हैं भाई मूवीज जाना है, फिल्म में जाना है, कौन सी मुझे देखनी है कौन सी नहीं, वो अफेक्ट आता है ना उस बात का, बाद में पता चलता है कि यही संकल्प मुझे चले मैंने देखा क्यों। तो बुद्धि जो है उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो चॉइस ले, तो चॉइस अगर हम राइट ले ना, और उसके देखने के लिए ऐसा होता है कि जैसे मैंने कुछ सुना बाद में मुझे बहुत विचार चलता है, तो फिर मैं सोचती हूँ ये सुना क्यों, कुछ हमने देखा। तो हर बात में सवेरे से रात तक हमको देखना पड़ता है कि हम कहाँ बुद्धि को लगाएं, कितना हम बुद्धि को दें, क्योंकि उसका मन पर असर आएगा, फिर हमारे बोलने पर असर आएगा, फिर हमारे कर्म पर असर आएगा।
तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर अंदर का जो डिस्कशन है वो शुरू हो गया किसी भी बात को लेकर, किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेकर, मतलब कि बुद्धि चलने लग गई है, फिर हम डिसाइड करें कि ये निर्णय लें कि ये इस पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो ताकि उसकी एनर्जी रिटेन हो पाए।
क्या है कि टेम्पटेशन एक बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, कई सिचुएशंस जो है वो तुरंत कुछ प्राप्त हो जाए, टेम्पटेशन में आके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। बेशक ये एक्सपीरियंस की बात है, लेकिन कई बार वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है और लॉन्ग टर्म चलता है। इसलिए एक प्रिंसिपल बना ले, अभी ये बुद्धि कर रही है, प्रिंसिपल बना ले कि मुझे टेम्पटेशन में नहीं आना है। देखिए आज जितना वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ग्रीड है। ग्रीड के कारण आज बहुत चाहिए परंतु बहुत कम होता जा रहा है, बहुत होना चाहिए उसका कम होता जा रहा है। कारण कुछ नहीं, ग्रीड है। परंतु एक दूसरा तरीका भी काम करने का है कि आप सच्चाई से मेहनत से करते रहो। अगर आप करते रहते हैं तो आपकी जो सफलता है ना वो सस्टेनेबल होगी। यानी सफलता एक साल, दो साल, पांच साल नहीं, लेकिन सफलता होती रहे। खासकर आज के समय पर कई लोग मेरे से पूछते हैं बिजनेस में सब में कि अच्छा चल रहा है, पर हमें हमेशा होता है कि कब तक, जैसे आज अमेरिका जैसे देश में कब तक। मैंने कहा अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे तो गारंटी है कि आपकी सफलता चलती रहेगी। परंतु अगर आप ग्रीड में चले जाते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आप वैल्यू नहीं रखते, ऑनेस्टी नहीं रखते, तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये भी एक समझने की बात है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, जो शुद्ध है, जो सतोगुणी एनर्जी है, उसमें सस्टेन करने की कैपेसिटी है।
एक और बात दीदी, जो वैल्यूज पर चलने की बात, एक बात तो ये आई कि ठीक है आपने कहा कि एक फेथ जो ट्रस्ट है वो बुद्धि को अगर हम देते जाए, मतलब बुद्धि तो बुद्धि स्ट्रांग होगी। दूसरा पेशेंस कि मैंने ट्रस्ट रख के एक निर्णय लिया है, पेशेंस रखूं कि ये ठीक ही होगा, आज लग भी रहे थे, एंड करेज, यू नो
कॉम्बिनेशन।
तो करेज में बहुत बड़ी बात आती है कि वैल्यूज जो मैंने आपने कहा कि बुद्धि ने तय की, या हमें नॉलेज से पता चला कि ये मेरी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, या आई लाइक बीइंग लाइक दिस। अब डिसीजन लेने पर बाहरी कार्यकलाप में भी अंदर में भी जो डिसीजन लेने होते हैं कि इस पर चला जाए, इन वैल्यूज पर, उसमें भी बहुत मन बाहर की इन्फॉर्मेशन ले लेके हमारे सामने बहुत सारे सिनारियोस क्रिएट करता है। तो वैल्यू पर चलते हुए डिसीजन कैसे ले, वो बुद्धि जो है वो अगर राइट वैल्यू पे होगी तो क्या करेज आएगी? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क।
नहीं, अगर कुछ भी गलत करते हैं तो अगर आज नहीं कल उसका रिजल्ट तो सामने आएगा। इतना भी कोई सोच ले कि ये राइट है, मुझे राइट ही करना है। जैसे दो तरह के कानून होते हैं, एक गवर्नमेंट के कानून होते हैं, एक हमारी मर्यादाओं के कानून होते हैं, या जो हमने अपने नियम बना लिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ले लें। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनको गॉडली लॉज और दूसरे लॉज दोनों, जिसको कहते हैं पर्सनल प्रिंसिपल्स और जो भी बाहर के लॉज बने हुए हैं, अगर हम दोनों पर ठीक चलते हैं। जैसे आप छोटी सी बात देख लीजिए, ट्रैफिक है तो येलो लाइट होती है, तो येलो लाइट होती है तो रुकना चाहिए ना, परंतु ड्राइवर या गाड़ी चलाने वाले ही सोचते हैं कि निकल जाओ एक, लेकिन फिर ये हैबिट भी हो जाती है, कभी तो चलो जरूरी है, फिर नेचर बन जाती है। और जब एक्सीडेंट होना होता है तो ऐसा नहीं होता कि रोज होता है, जब होना होता है तो मिस्टेक से होता है। तो छोटी भी मिस्टेक अगर हम करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो मैं तो हमारे पास सबको यही कहती हूँ कि एक बार आप करेंगे ना, फिर दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार आपको लेगा कि ये कोई बात नहीं, पर जब पांचवी बार उसकी रिजल्ट आएगी तो कोशिश अपनी जीवन को चलाने के लिए कुछ नियमों को, कुछ प्रिंसिपल्स को स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में रॉन्ग एक्सपीरियंस ना आए, दुख ना आए या कोई ट्रेजेडी ना हो, वो बनाने, कई कहते हैं कि हमने तो बहुत समय बनाए रखे, पर वो नहीं होता है। लेकिन जब टाइम आता है ना, बहुत समय आपने किया, एक बार ब्रेक किया तो उसकी भी जो है कॉन्सिक्वेंस। जैसे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो सब वेजिटेरियन खाते हैं, बहुत शुद्ध भोजन देते हैं। तो अमेरिका से एक बहन आई, वो प्लेन में बैठी तो उन्होंने पूछा कि क्या खाना है, नॉन वेज वेज, तो उसको भी ख्याल नहीं रहा, वो नॉन वेज थी, उसने कहा नॉन वेज दे दो, तो उसने खा लिया। वो जब तक न्यूयॉर्क पहुंची वो इतनी बीमार हो गई, उसको डायरिया हो गया, वॉमिटिंग होने लगी, क्योंकि उसके शरीर में इतना। तो मैंने उसको उस समय यही कहा कि अब थोड़ा भी सोचते, तो वो जब न्यूयॉर्क पहुंची तो क्या था कि एक शुद्ध बात चल रही थी, शरीर में जा रही थी, फिर अशुद्ध बात आ गई, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होती है। तो इतनी, इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि देखो अपने आप से नहीं होता है। आज हम लोग भी हैं तो अपनी उन्नति के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए स्टडी करते हैं। सबको हम कहते हैं कि कोई किताब से, कोई अपनी जो क्लासेस चलती है मेडिटेशन की या कहीं पर जाके स्टडी करो। रोज अगर हम मॉर्निंग में कुछ स्टडी करते हैं तो वो जो स्टडी करते हैं ना उसकी जो पावर है वो दिन भर हमको हेल्प करती है। अगर नहीं करते, माइंड को भी और बुद्धि को गाइड तो करना पड़ता है ना, तो एक होता है प्रिंसिपल्स, दूसरा होता है प्रैक्टिसेस, यानी कुछ बातों का आपने नियम बना लिया, परंतु दूसरा है कि उसका अभ्यास भी तो चाहिए ना। तो इसलिए चाहे मेडिटेशन कहिए, परमात्मा की याद कहिए, परमात्मा की लगन कहिए, कुछ हमको अभ्यास करते हैं, स्ट्रेंथ उससे बनती। जैसे अच्छा भोजन खा लिया पर एक्सरसाइज नहीं होती इक्वली, तो इसलिए प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं परंतु प्रिंसिपल्स के साथ कुछ अभ्यास नहीं लेते हम तो वो पावर नहीं आती। और पावर ना आने से क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ फिर गलती हो जाती है
और वही फिर हमारे पर क्वेश्चन मार्क, बुद्धि पे भी फिर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स बनाए भी दीदी और उस पर नहीं चले, तो वही आत्मबल की कमी और फिर वही जो इंटरनल उलाहने हैं कि फिर हमसे मिस्टेक्स हुई एंड देन वी सी द रिपरकशंस। तो आज एक और हमने जो बात रियलाइज की वो ये कि बुद्धि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें मन पर तो विचार चलता है, प्रभाव पड़ता ही है, विचार तो चलते ही हैं, साथ ही बुद्धि जो है उसका जो बल है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, किस तरह की जर्निंग है उस पर डिपेंड करता है। आज हमने समझा है कि बुद्धि जो है उसमें अगर हमारे पास करेज है, हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है, सही वैल्यूज है, फेथ है, और फिर साथ में अगर हमें उसको निर्णय करने के लिए डिसीजन ले लेते हैं और थोड़ी सी पेशेंस रखते हैं, क्योंकि एक बार वैल्यूज पर अगर हम चलते हुए निर्णय ले रहे हैं तो पेशेंस रखें, वो डिसीजन जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। और एक और जो बहुत अच्छी पावर हमें पता चली है जो बुद्धि में ही है, सपोज फॉर द टाइम बीइंग अगर रिजल्ट ठीक नहीं भी आ रहा है, सो देन पावर टू फेस, कि इवन इफ इट इज राइट नाउ लग रहा है कि ठीक नहीं हुआ है, जो वैल्यू अगर सही थी तो इन द लॉन्ग रन ठीक हो सकता है। आई हैव द करेज और आई हैव द पावर टू फेस दिस सिचुएशन। दीदी थैंक यू सो मच, ये जो पूरी बातचीत रही है, हर बार बात यही समझ में आती है कि मेडिटेशन जो भी हमने समझा, आपने कहा कि एक कॉन्वर्जेशन है, उसको रीइंस्टेट करती है, मन और बुद्धि के बीच का जो एक सामंजस्य बैठता है। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज जो हमने समझा है उसे भी हमारे साथ शेयर करें।
अब जैसे जैसे अपनी बुद्धि के बारे में पहचान हो रही है तो मैं ये कहूंगी कि अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा में ये जो बुद्धि की योग्यता है, तो मैं बुद्धि को भी चलने न दूं, शांत करूं, एकाग्र करूं, और इस एकाग्रता के लिए मन और बुद्धि दोनों को त्रिकुटी के बीच जहां मुझ आत्मा का निवास स्थान है और आत्मा के जो निजी गुण प्रेम शांति आनंद है, तो मुझे अपनी बुद्धि को और मन को दोनों को अपने निजी गुणों का अनुभव, बुद्धि भी धीरे धीरे शांत एकाग्र, प्रेम का अनुभव, शांति का अनुभव, इस एकाग्रता में कुछ क्षणों की साइलेंस, बुद्धि भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि को भी प्रेम का अनुभव, मन को भी प्रेम का अनुभव, बुद्धि में भी शक्ति का अनुभव, मन में भी शांति का अनुभव, और बुद्धि का संबंध परमपिता परमात्मा से माता पिता के रूप में बुद्धिमानों की बुद्धि तो एक परमात्मा ही है। तो अपनी बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र कर, उस एकाग्रता से परमात्मा से शक्ति लो, जिस शक्ति के आधार से निर्णय सही हो, स्पष्ट हो, और बुद्धि भी जागृत हो। विवेक उत्पन्न हो जो आनंद की स्थिति का अनुभव हो सके जिस कुछ क्षणों के लिए उस आनंद में, शांत में, स्थिति में रहे।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति,
ओम शांति।
अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई बात है, आपका स्वागत। आप हमें मेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस ऑन awakening@pmtv.in और कॉल अस ऑन 09999559660।
आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति,
ओम शांति। आई एम अ पीसफुल सोल। ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। ये ध्वनि मंगल ध्वनि शांति ओम। दिस साउंड